लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वेटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर, अमानवीय जीवन परिस्थितियों में हाशिए पर जीवन यापन करने वालों के लिए हम आपसे याचना करते हैं, ताकि सरकारी, गैर सरकारी और कलीसियाई संस्थाओं द्वारा उनकी अनदेखी न की जाए और न ही उन्हें कम महत्व का समझा जाए। आमीन। नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय, भक्ति गीत और समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं जूलियट क्रिस्टोफर और सिस्टर उषा तिर्की। पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम के अंतर्गत इस समय हम बाइबल धर्मग्रंथ के प्राचीन व्यवस्थान में निहित सूक्ति ग्रंथ की व्याख्या में संलग्न हैं। धनवान के बहुत मित्र होते हैं, किंतु दरिद्र अपने मित्रों द्वारा त्याग दिया जाता है। झूठा गवाह निश्चय ही दंडित किया जाएगा और मिथ्यावादी दंड से नहीं बचेगा। कुलीन की चापलूसी करने वाले अनेक होते हैं। सभी लोग उपहार देने वाले के मित्र होते हैं। जब दरिद्र के सभी भाई उसकी उपेक्षा करते हैं, तो उसके मित्र उससे कन्नी क्यों नहीं काटेंगे? वह उन्हें पुकार पुकार कर बुलाता है, किंतु वे पास नहीं रुकते। श्रोताओं, ये थे सूक्ति ग्रंथ के 19वें अध्याय के 4 से लेकर 7 तक के पदों में निहित शब्द। विगत सप्ताह इन्हीं पदों की व्याख्या से हमने पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम समाप्त किया था। इस बात पर हमने आपका ध्यान आकर्षित कराया था कि धनवान व्यक्ति बहुतों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, हालांकि इस प्रकार की मित्रता ईमानदार या सार्थक नहीं होती। प्रायः व्यक्ति दोस्ती कुछ हासिल करने के लिए करता है, न कि मित्र को कुछ देने के लिए। इसीलिए कहा गया है कि धनवान के बहुत से मित्र होते हैं, किंतु दरिद्र अपने मित्रों द्वारा त्याग दिया जाता है। बाइबल आचार्य वाल्दके कहते हैं कि जन समुदाय में प्रत्येक व्यक्ति उस व्यक्ति की तलाश में होता है जिससे कुछ मिल सकता है। उस व्यक्ति की वह खोज नहीं करता जिसे कुछ देना पड़ सकता है। सूक्ति ग्रंथ के लेखक का आग्रह है कि हम धन के लालच में नहीं, बल्कि अन्यों की मदद के लिए मित्र बनाएं। हम केवल अपने स्वार्थ के लिए मित्र न बनाएं, बल्कि अपने मित्र, पड़ोसी और भाई की मदद के लिए सदैव तत्पर रहें, तभी हम सच्चे मित्र कहलाएंगे। आगे लेखक कहता है, झूठा गवाह निश्चय ही दंडित किया जाएगा और मिथ्यावादी दंड से नहीं बचेगा। श्रोताओं, न्यायकर्ता गवाहों के आधार पर अपना फैसला देते हैं, इसलिए यह अति आवश्यक है कि जो व्यक्ति गवाही देता है वह सच्ची गवाही दे और अन्याय न होने दे। यह सिद्धांत केवल अदालतों पर ही नहीं, अपितु दैनिक जीवन में भी लागू होता है, क्योंकि ईश्वर सत्य हैं और उन्हें सत्य से प्रेम है। ईश्वर चाहते हैं कि हम सदैव सच का साथ दें, सदैव सत्य बोलें और किसी का अहित न करें। 6वें और 7वें पदों में लेखक कहता है, कुलीन की चापलूसी करने वाले अनेक होते हैं। सभी लोग उपहार देने वाले के मित्र होते हैं। जब दरिद्र के सभी भाई उसकी उपेक्षा करते हैं, तो उसके मित्र उससे कन्नी क्यों नहीं काटेंगे? श्रोताओ, यह स्वाभाविक है कि जब कोई कुलीन वर्ग या उच्च पद या महत्व का व्यक्ति होता है, तो बहुत से लोग उसका अनुग्रह चाहते हैं, यह सोचकर कि प्रभावशाली लोगों की कृपा दृष्टि रहने से लाभ होगा। किंतु सूक्ति ग्रंथ का लेखक सचेत करता है कि बहुत से लोग जो मित्रता की पेशकश करते हैं, वे स्वार्थी उद्देश्यों से ऐसा कर सकते हैं। अस्तु, झूठे मित्रों के बजाय दरिद्र ही अच्छा है, भले ही उससे सब कन्नी काटते हों। स्वभावतः लोग गरीब व्यक्ति से दूर भागते हैं, भले ही वह उन्हें शब्दों से समझाने और मनाने की कोशिश करता हो, इसके विपरीत प्रभु ईश्वर गरीबों और जरूरतमंदों का कभी परित्याग नहीं करते। सच्चे धन का मर्म समझाते हुए कुरिन्थियों को प्रेषित दूसरे पत्र के 8वें अध्याय में संत पॉल लिखते हैं, आप लोग हमारे प्रभु येसु मसीह की उदारता जानते हैं। वे धनी थे किंतु आप लोगों के कारण निर्धन बन गए, जिससे आप उनकी निर्धनता द्वारा धनी बन गए। आगे 19वें अध्याय के 8 से लेकर 11 तक के पदों में लेखक कहता है, जो प्रज्ञा करता वह अपना हितकारी है, जो समझदार है वह फलेगा फूलेगा, झूठा गवाह निश्चित ही दंडित किया जाएगा और मिथ्यावादी विनाश की ओर जाएगा। भोग विलास का जीवन बिताना मूर्ख को शोभा नहीं देता, वैसे ही दास का शासकों पर शासन करना और भी अधिक अशोभनीय है। समझदार व्यक्ति देर से क्रोध करता है, दूसरों के अपराध क्षमा करना उसका गौरव है। वस्तुतः श्रोताओं, यहाँ लेखक ने कहना चाहा है कि ज्ञान प्राप्त करना और उसका अनुसरण करना हमारी भलाई के लिए है, हमारे जीवन के लिए उपयोगी ही नहीं अपितु सुख और शांति का भी वह स्रोत है। इसलिए केवल भौतिक वस्तुओं तक ज्ञान को सीमित न किया जाए, बल्कि इसके जरिए मन और आत्मा की शांति और शक्ति प्राप्त की जाए। अपनी आंतरिक शांति के लिए ज्ञान हासिल करना आवश्यक है। ज्ञान प्राप्त करना इस बात का प्रमाण है कि हम ईश्वर से वरदान स्वरूप मिले अपने जीवन से प्रेम करते हैं। फिर यह स्मरण रखना भी नितांत आवश्यक है कि बुद्धि या विवेक केवल पाने की चीज नहीं है, प्रज्ञा या ज्ञान केवल पाना नहीं है, अपितु इसे अन्यों के साथ साझा करना और सब समय बरकरार रखना अनिवार्य है, ताकि जीवन के हर पग पर हमें मार्गदर्शन मिलता रहे। 19वें अध्याय के 9वें पद में सूक्ति ग्रंथ का लेखक कहता है, झूठा गवाह निश्चय ही दंडित किया जाएगा और मिथ्यावादी विनाश की ओर जाएगा। श्रोताओं, यह जीवन का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि जानबूझकर गलत काम करने वाले को अपनी गलती के लिए दंड भोगना होगा, चाहे न्याय की अदालत हो या फिर दैनिक जीवन की कोई स्थिति। ईश्वर चाहते हैं कि हम सदैव सत्य का साथ दें, हमेशा सत्य बोलें और झूठ को अपने जीवन में कोई स्थान न दें। सूक्ति ग्रंथ का लेखक भी कहता है कि झूठा दंडित किया जाएगा और मिथ्यावादी विनाश की ओर जाएगा। यह पद झूठ बोलने वाले या झूठी गवाही देने वाले के प्रति ईश्वर के न्याय की निश्चितता को घोषित करता है। बाइबल धर्म ग्रंथ की अंतिम पुस्तक यानी कि प्रकाशना ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, कायरों, अविश्वासियों, नीचों, हत्यारों, व्याभिचारियों, ओझों और हर प्रकार के मिथ्यावादियों का भाग्य यह होगा, धधकती आग और गंधक के कुंड में द्वितीय मृत्यु। आगे 19वें अध्याय के 10वें पद में सूक्ति ग्रंथ का लेखक कहता है, भोग विलास का जीवन बिताना मूर्ख को शोभा नहीं देता, दास का शासकों पर शासन करना और भी अशोभनीय है। भोग विलास का जीवन बिताना मूर्ख को शोभा नहीं देता का भाव यही कि कई लोग इतने मूर्ख होते हैं कि वे प्रज्ञा का बहिष्कार कर देते हैं और इसी कारण भोग विलास के जीवन को सब कुछ मान बैठते हैं, जबकि ऐसा करना उन्हें कतई शोभा नहीं देता। इसी प्रकार दास का शासकों पर शासन करना और भी अधिक अशोभनीय है। तात्पर्य यह है कि मनुष्य को हमेशा अपनी हद के अंदर रहना चाहिए। कहते हैं ना, जितनी चादर है उतने ही पैर फैलाओ। दास होते हुए शासक जैसा व्यवहार करना अपनी सच्चाई को झुठलाना है, जो कि सूक्ति ग्रंथ के लेखक के अनुसार अशोभनीय है। वस्तुतः श्रोताओं, यहाँ सूक्ति ग्रंथ के लेखक राजा सुलेमान ने स्वाभाविक प्रज्ञा की बात की है। इस पद की व्याख्या बाइबल आचार्यों ने अलग अलग ढंग से की है। कुछ एक ने इसे सुसमाचार के विपरीत बताया है, जिसमें जो बड़ा है उसे छोटा और जो छोटा है उसे बड़ा होना चाहिए। दूसरी ओर प्राचीन व्यवस्थान के प्रज्ञा ग्रंथ में निहित धर्मी और अधर्मी के विषय में भिन्न निर्णय का संदर्भ देकर बाइबल आचार्य वाल्थके कहते हैं, वह दास जो स्वभाव और प्रशिक्षण दोनों से असक्षम है शक्ति की भावना से मदहोश हो जाएगा और उसका शासन असहनीय निरंकुशता में विकसित हो जाएगा, जिससे कुप्रबंधन, सत्ता का दुरुपयोग, भ्रष्टाचार, अन्याय और सामाजिक अराजकता को प्रश्रय मिलेगा। और 19वें अध्याय के 11वें पद में लेखक कहता है, समझदार व्यक्ति देर से क्रोध करता, दूसरों के अपराध क्षमा करना उसका गौरव है। ज्ञान से मिला विवेक और समझदारी व्यक्ति को क्रोध से बचाती है, जो मनुष्य की बहुत बड़ी कमजोरी है। एक बुद्धिमान पुरुष या महिला को पता होता है कि बहुत बार उनकी गलतियों को माफ कर दिया गया है, इसलिए उन्हें भी अन्यों को क्षमा कर देना चाहिए। प्रभु ईश्वर ने यीशु ख्रीस्त के द्वारा हमें पापों की क्षमा दिलाई है और इसलिए हम भी एक दूसरे को क्षमा करें तथा दूसरों के अपराध क्षमा करने में अपना गौरव माने।
स्वर्ग छोड़ के धरती पे आया राजा होकर प्रजा बना, स्वर्ग छोड़ के धरती पे आया राजा होकर प्रजा बना, मेरे गुनाहों की माफी देने, मेरे गुनाहों की माफी देने आया तू, आया तू आया, पर मैंने न तुझको पहचाना, पर मैंने न तुझको पहचाना, क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो,
क्षमा करो। आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं, लीजिए प्रस्तुत है समाचार। पोप फ्रांसिस ने बृहस्पतिवार को पौलाइन क्रिस्त एकता संगोष्ठी के 45 प्रतिभागियों से वैटिकन में मुलाकात की और बाइबल के विशेषज्ञों से क्रिस्त एकता संवाद को बढ़ावा देने के आधार के रूप में ईश्वर की प्रतिज्ञाओं पर भरोसा रखने का आग्रह किया। संत पापा ने संत पौलुस के पत्रों के लिए समर्पित विशेषज्ञों के क्रिस्त एकता दल के कार्यों की सराहना की और कहा कि उनका बड़ा सहयोग ख्रिस्तों के बीच आपसी मुलाकात है, जो भिन्न होते हुए भी संत पौलुस की शिक्षा की प्रज्ञा से एक हैं। पौलाइन ख्रिस्त एकता संगोष्ठी की शुरुआत द्वितीय वैटिकन महासभा के तुरंत बाद करीब 10 देशों के विशेषज्ञों एवं विभिन्न ख्रिस्त परंपराओं के द्वारा हुई थी। इस वर्ष की संगोष्ठी इसका 26वां संस्करण है। संगोष्ठी के प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए संत पापा ने शिक्षाविदों के बीच ठोस एवं विद्वत्तापूर्ण व्याख्यात्मक आदान प्रदान पर भी जोर दिया, जो प्रेरितों के पत्रों की सुंदरता और ख्रिस्त एवं कलीसिया जीवन के लिए उनके महत्व को उभरने देता है। संत पापा ने पहल को बचाव के घेरे के बाहर आने का साहसी कदम और एकता की पूर्णता एवं स्वस्थ आत्मा की अधीरता की गवाही देने की प्रतिबद्धता के लिए बढ़ावा देने की भविष्यवाणी कहा। उन्होंने कहा, पूरे इतिहास में विभाजन दुख का कारण रहा है, अतः आज हमें अपने आप को उल्टे क्रम में प्रतिबद्ध करने की जरूरत है। एकता और भाईचारे के रास्ते पर आगे बढ़ना है, जो खासकर प्रार्थना, अध्ययन और एक साथ कार्य करने से शुरू होता है। इस बात पर गौर करते हुए कि संगोष्ठी के प्रतिभागी रोमियों के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 9 से 11 पर प्रकाश डाल रहे हैं, पोप ने रोमियों के पत्र अध्याय 11 के 29 पद में वर्णित ईश्वर के अपरिवर्तनीय वरदानों और आह्वान पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, यहाँ संत पौलुस हमें एक महत्वपूर्ण संदेश देते हैं, ईश्वर मुक्ति की अपनी प्रतिज्ञा से विफल नहीं होते और अप्रत्याशित एवं आश्चर्यजनक तरीकों से भी उन्हें धैर्यपूर्वक पूरा करते हैं। पोप फ्रांसिस ने कहा कि संगोष्ठी के काम के लिए उनका समर्थन ईश्वर की दया एवं प्रतिज्ञा में हमारे विश्वास की नींव पर आधारित है। प्रतिभागियों को अपने भाईचारे और शैक्षणिक संवाद को जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करते हुए संत पापा ने कहा, सबसे बढ़कर खुद को संत पौलुस के पत्रों में निहित अनगिनत आध्यात्मिक वरदानों से आश्चर्यचकित होने दें, ताकि ख्रिस्त समुदायों को नए शब्द, पिता की करुणावान भलाई, ख्रिस्त की मुक्ति की नवीनता और आत्मा की नवीकृत आशा का संचार करने में सक्षम होने में मदद दिया जा सके। वैटिकन में गुरुवार को बेल्जियम के राजा फिलिप और रानी मैटिल्डे के साथ एक मुलाकात के दौरान पोप फ्रांसिस ने ख्रिस्त विश्वास की भूमिका एवं कात्तिक कलीसिया और यूक्रेन में युद्ध पर चर्चा की। वैटिकन प्रेस कार्यालय के अनुसार 14 सितंबर को वैटिकन में संत पापा फ्रांसिस ने बेल्जियम के राजा फिलिप और रानी मटिल्डे का स्वागत किया। पोप फ्रांसिस से मुलाकात के उपरांत बेल्जियम के राजा और रानी ने वैटिकन विदेश सचिव महाधर्मदश पॉल रिचर्ड गलाघर से मुलाकात की। विज्ञप्ति में बतलाया गया है कि मुलाकात सौहार्दपूर्ण रही, जिसमें परमधम पीठ एवं बेल्जियम के बीच द्विपक्षीय संबंध पर संतुष्टि व्यक्त की गई तथा क्रिस्ते विश्वास की भूमिका एवं कार्तिक कलीसिया की भूमिका पर प्रकाश डाला गया। विज्ञप्ति में कहा गया है कि चर्चा मुख्य रूप से आम हित के मामलों एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति के कुछ मुद्दों पर केंद्रित थी, जिसमें अफ्रीका, यूक्रेन में युद्ध और लोगों के बीच शांति के प्रति प्रतिबद्धता पर विचार किया गया। बेल्जियम के शाही परिवार ने स्वर्गीय पोप बेनेडिक्ट 16 के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए इस साल के जनवरी माह की शुरुआत में वैटिकन की यात्रा की थी। क्रोएशिया में धर्म शिक्षकों का एक समूह जो स्प्लिट मकारास का महाधर्म प्रांत के धर्म शिक्षा कार्यालय द्वारा समर्थित है, अपनी कक्षाओं के बाहर भी लोगों के करीब रहने की कोशिश कर रहा है। दुनिया के कई हिस्सों में छात्र अपने जीवन और शिक्षा का एक बड़ा हिस्सा सोशल मीडिया को समर्पित कर रहे हैं। वे न केवल मनोरंजन की सामग्री बल्कि अपनी जानकारी और ज्ञान के स्रोत भी ऑनलाइन ढूंढ रहे हैं। सवाल उठता है, धर्म, रिश्ते और जीवन शैली जैसे विषयों पर उनकी जानकारी के स्रोत क्या हैं? उन्हें जीवन के अर्थ के बारे में उत्तर कौन देता है? जैसा कि पोप फ्रांसिस ने अपने 2019 विश्व संचार दिवस संदेश में याद दिलाया है कि डिजिटल दुनिया को दैनिक जीवन से अलग नहीं किया जा सकता। यह मानव के ज्ञान संचय करने, सूचना प्रसारित करने और संबंध विकसित करने के तरीके को बदल रहा है। क्रोएशिया में धर्म शिक्षकों ने इस मांग का जवाब दिया है और डिजिटल मार्ग अपनाया है। उन्होंने एक वेबसाइट प्रोजेक्ट तैयार किया है, जिसे उन्होंने स्प्लिट मकारास्का के महाधर्म प्रांत के धर्म शिक्षा कार्यालय के समर्थन में जारी किया है। उनका लक्ष्य डिजिटल माध्यमों से न केवल छात्रों को बल्कि उन सभी को शिक्षित और प्रेरित करना है जो ख्रिस्त दृष्टिकोण से कलीसिया और अन्य विषयों पर अधिक सीखना चाहते हैं। धर्म शिक्षकों में से एक नेनाट पालाक पीएचडी, जिन्होंने वेबसाइट प्रोजेक्ट की शुरुआत की है, वैटिकन न्यूज से बात करते हुए पहल के लक्ष्य के बारे बतलाया। उन्होंने कहा, धर्म शिक्षकों के रूप में हम इस क्रांति का हिस्सा बनना चाहते हैं और साहसपूर्वक नए क्षेत्रों में कदम रखना चाहते हैं। हालांकि धर्म शिक्षकों का मिशन मुख्य रूप से कक्षाओं से संबंधित है, प्रोजेक्ट के सदस्यों ने उस छवि को बदलने का फैसला किया है। जब उन्होंने देखा कि उनके छात्रों की आदतें बदल गई हैं, तो उन्होंने ऑनलाइन विकल्प को चुना है। डॉक्टर पलाक ने कहा, हम देख रहे हैं कि हमारे विद्यार्थी अपने दिन भर के करीब एक तिहाई भाग फोन पर बिता रहे हैं। हम इस यात्रा में उनके साथ चलना चाहते हैं, उन्हें गुणवत्तापूर्ण सामग्री प्रदान करना चाहते हैं और अंततः उन्हें जीवित ख्रिस्त से मुलाकात करने हेतु आगे बढ़ने में मदद देना चाहते हैं। क्रोएशिया में धर्म शिक्षा टीम का काम इस बात पर प्रकाश डालता है कि कैसे ख्रिस्त समुदाय डिजिटल क्षेत्र में सुसमाचार को फैलाने के लिए नए रास्ते खोलकर रचनात्मक रूप से एक ठोस आधार के रूप में कार्य कर सकते हैं। नई दिल्ली से प्रकाशित साप्ताहिक इंडियन करेंट्स के संपादक फादर सुरेश मैथ्यू का कहना है कि ख्रिस्त और उनकी संस्थाओं को देश में हिंदुत्ववादी तत्वों द्वारा फैलाई जा रही नफरत का सामना करना पड़ रहा है। कैपुचिन फादर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कार्तिक शैक्षणिक संस्थानों संघ की वार्षिक आम सभा की बैठक के संबंध में एक सेमिनार को संबोधित कर रहे थे। दो उत्तर भारतीय राज्यों के विभिन्न कार्तिक शैक्षणिक संस्थानों के 200 से अधिक प्रधानाध्यापकों ने 6 से 7 सितंबर के कार्यक्रम में भाग लिया, जो इस बात पर जोर देने के लिए आयोजित किया गया था कि कार्तिक संस्थानों को समय के संकेतों को कैसे पढ़ना और उसके अनुसार कार्य करना चाहिए। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।